ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்கபதக்ரமோபநிஷதே காயந்தி யமசாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யமயோகினோ யஷாந்தன்ன விதுசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மை நம. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவி சரஸ்வதி வ்யாஸம் தத்ோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம. வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஃ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் 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 சத்யம் ஞான அனந்தம் ப்ரஹ்ம 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 ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம் ஸ்ரீபோஹம் ஸ்ரீபோஹம் சச்சிதானந்தோஹம். போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கி. சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலை அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் கருணா மருணாலய் பிரபு கி அசீம் அஹேது கி கிருபா கே சாத் கல் விசார் கர் ரஹே தே. ஹிரணேன பாத்ரேண சத்யஶ்சாபிஹிதம் முகம் தத் பூஷானாம் வா ப்ரோணு சத்ய தர்மாய த்ருஷ்டயே. हम सत्य धर्म सत्य धर्माय आत्मा का धर्म ही सत्य है. सत्य ही आत्म धर्म है. इसलिए इस सत्य धर्म आत्मा का हम दर्शन कर सके और इसके लिए आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म जिसकी रश्मियां चारों ओर फैली हुई हैं और जिसके कारण सत्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है और इस ज्योतिर्मय रश्मियों के द्वारा अंतःकरण रूपी पात्र जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों के का समूह जिसके अंदर भरा हुआ है जब तक ये खाली नहीं होगा इसका ढक्कन हटेगा नहीं सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन होगा नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि हे भगवान जो सत्य जो हृदय में चारों तरफ चमक से इतनी बड़ी चमक है कि जिस चमक की चौंध से हमारे नेत्र उस सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे उसके लिए भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें इस सत्य का दर्शन करने के लिए वो दृष्टि प्राप्त हो जिससे हम वो सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान सके। अगले मंत्र में भी यही प्रार्थना है पूषा नेव कर्ष यम सूर्य प्रजापत्य व्यहु रश्मि समूह तेजो यत् रूपम कल्याणम तमम यत् पश्यामि सो वाशवो। हे जगतपते सूर्य हे एकांकी गमन करने वाले यम हे सूर्य प्राण जो एकांक यम देव को सदैव एकांत में एकांकी गमन करने वाले कहा गया है हे प्रजापति नंदन तुम अपनी किरणों को हटा लो और उस तेज को समेट लो तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देख सकूं और यह जो आदित्य मंडल स्थित पुरुष है वाशो वह मैं ही हूं क्या देख सकूं कि सोह वह मैं ही हूं। ईश्वर को यहां हिरण गर्भ कहा गया है हिरण्यमय माने जिसके अंदर सृष्टि का सकल सृष्टि का संस्कार जिसके अंदर विद्यमान हो उसे हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य गर्भ से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है वह तो यो ब्रह्मा विवदाति पूर्वम ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले भी हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले भी था और हिरण्य गर्भ से ही ईश्वर से ही ये सकल सृष्टि उत्पन्न हुई है था तो वो पहले और था ही था जब सृष्टि अर्थात ये प्रपंच कुछ नहीं था संसार का कुछ नहीं था तब भी वो था अर्थात हृदय गर्भ और संसार का जो नियंता है संसार को जो ईषण करने वाला शासन करने वाला है वह भी ईश्वर है अर्थात हृदय गर्भ से ही इस सब का शासन हो रहा है। और यम सूर्य प्रजापत्य समूह रश्मि रश्मि समूह कहा गया है रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की रश्मियां किरणें और जैसे सूत में से कपास में से धागा निकलता है और धागे से धीरे धीरे वस्त्र बनते हैं उसी तरह से सूत के धागे को रश्मि कहा गया है अर्थात जो बांधने का काम करती है जिससे बांधा जाता है तो संसार से हम बंधते हैं, बोले कैसे बनते हैं, मेरा अहम वृत्ति, जब अहम की वृत्ति होती है तो तब अहम वृत्ति से मेरा 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 ये होता है, और मेरे मेरे पन के से ही हम संसार के साथ में बंधते हैं। मेरा 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 ऐसा अहम, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ऐसी हम कहकर इतना विशाल संसार अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। जिस संसार को, जिस रश्मियों के समूह को हमने अपने अंतःकरण रूपी पात्र में भरा, बोले इसका रूप कैसा है, उसके लिए का हिरण्य माने सोने के समान जिसमें चमक हो, जो आकर्षित करने वाला हो, और जिस चमक से वो सत्य को ढक लिया हो, सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा हो, सत्य को जिस जैसे हम लोग कह देते हैं कि देखो आज तो सूरज को बादलों ने ढक लिया, सूरज को बादलों ने ढक लिया, बादल आ जाने पर सूर्य की चमक हमें नहीं दिखाई पड़ती है, सूर्य की चमक कम हो जाती है, उसी तरह से इस हिरण्यमय संस्कारों के समूह ने वो सत्य का दर्शन, जो सत्य धर्माय है, अपना अहम है, स्वरूप है, मैं है, उसका हम दर्शन नहीं कर पा रहे। बोले क्या कि इस संस्कार जो हमारे हिरण्य अंतःकरण के अंदर जो संस्कारों की का समूह है, चमक है, जिससे वो दर्शन नहीं हो पा रहा है, हमसे हट नहीं पा रहा है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप ऐसी कृपा करें कि मैं उस सत्य की उपासना कर सकूं, सत्य धर्म का यथार्थ रूप से सत्य को जान सकूं, सत्य का दर्शन कर सकूं, सत्य को पहचान सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें, ऐसा कहकर जिससे संपूर्ण, इसीलिए कहा हिरण्यगर्भ, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्राणी मात्र का जो स्वामी है, उसी से प्रार्थना की गई है कि आपसे जो ये सत्य छुपा हुआ है, जिस आपके कारण जब तक ये सृष्टि दिखती रहेगी, जब तक संसार प्रपंच व्याप्त होता रहेगा, तब तक हम सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे, सत्य को नहीं देख पाएंगे। हमें तो उठते से, आंख खुलने से हमें संसार दिखता है, संसार का प्रपंच दिखता है, संसार में मेरा तेरा दिखता है, और संसार को ही हम मेरा कह करके अपनाते हैं, और दिन रात इसके साथ मैं ये और मेरे को लेकर के, मैं और ये मेरा, मैं हमने किसे समझा, बोले जो हमको हमारे अंदर पूर्व जन्म की बुद्धि के द्वारा, संस्कारों के द्वारा जैसी बुद्धि उपजी, उस बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमको मिला, उस ज्ञान को ही हमने अपने आप को मैं समझा, और उस परोक्ष ज्ञान के द्वारा मैं समझ करके उस संसार प्रपंच की रश्मियों के साथ, समूह के साथ बध करके हम दिन रात इसी चमक के अंदर रहे, यही सब देखते रहे, परंतु सत्य का दर्शन नहीं कर सके। इसलिए ईशावास्य उपनिषद के 15वें, 16वें और 17वें मंत्र में केवल भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हे हिरण्य गर्भ, मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं, सत्य धर्माय दृष्टये, लक्ष्य क्या है, बोले सत्य, और सत्य ही धर्म है, सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, और उस सत्य को हम सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। सत्यम परम धीमहि, हम सब सत्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बोले इसलिए चाहते हैं कि हम सब सत्य के अंश हैं, सब सत्य स्वरूप ही है, हम सब सत्य ही स्वरूप है। इसलिए हमारी जो अपनी प्रार्थना है, अपनी चाह है, बोले वो किसके लिए है? सत्य के लिए है। सत्य की चाह करना, क्योंकि हम सत्य हैं इसलिए चाह कर रहे हैं, सत्य को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। परंतु उस सत्य को जानने में, उस सत्य को पहचानने में हमारे लिए बाधा क्या, रुकावट क्या है? बोले रुकावट है ये जो अंतःकरण है, और इस अंतःकरण में एक जन्म के नहीं, अनेका अनेक जन्मों का जो संस्कार समूह इकट्ठा हो रखा है, और इस संस्कार समूह ने ढका हुआ है, ढक दिया है। इसलिए हिरण्येन पात्रेण, इस हिरण्य पात्र से ढक्कन हटे, माने संस्कार समूह हटे, तो हमें सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य स्वरूप आत्मा का हमें दर्शन हो सके। और दर्शन क्या हो? सोहस्मी, वह मही हूं, वह मैं ही हूं। बोले ये कब संभव है? जब इसका ढक्कन हटेगा, ये संस्कारों का समूह, एक जन्म का नहीं, कई जन्म जन्म, और इसके अंदर संस्कारों के समूह से, इसके अंदर उपासना से संस्कार इकट्ठा हुआ, और ये जो संस्कारों की चमक है इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है। बोले क्योंकि इसके अंदर हिरण्य ईश्वर पहले मंत्रों के द्वारा ये बताया गया कि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां देवता हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्योंकि जो उपासना की जाती है, देव ईश्वर की उपासना, समस्त की उपासना, और समस्त की उपासना से व्यष्टि की पूर्ति होती है, और जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। ये बात पूर्व मंत्रों के द्वारा समझाई गई थी नारायण। इसलिए आइए अब केवल हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो अंतःकरण का हिरण्यमय पात्र है, आप वेदांत के द्वारा अंतःकरण, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चार चीजों को लेकर अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। तो पहली बात मन है, दूसरी बात चित्त है, और तीसरी बात बुद्धि है, चौथी बात अहंकार है। तो क्या ये चारों चीज अलग अलग हैं? मन अलग है, बुद्धि, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, और अहंकार अलग है? बोले नहीं। जो वृत्ति, जो चेतन संकल्प और विकल्प करता है, उस संकल्प और विकल्प करने वाले चेतन को मन कह देते हैं, और वही चेतन जब संस्कारों के समूह को इकट्ठा करता है तो उसका नाम चित हो जाता है, और वही चेतन जब निर्णय करने लगता है, निर्णय करता है, तो वही वृत्ति, वही चेतन बुद्धि कहलाता है, और वही चेतन जब वृत्ति के रूप में, वृत्ति के रूप में रहता है, तब वह अहंकार कहलाता है। इस प्रकार यह चेतन तो एक है और वह अपने पृथक पृथक कार्यों के द्वारा पृथक पृथक नाम से कहा जा रहा है, जिसको अलग अलग नाम से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वह चेतन तो अलग नहीं है, वो तो एक ही है। और इसी एक चेतन से ये अंतःकरण चतुष्टय माने इसके अंदर मन के द्वारा जो कार्य हुए, चित्त के द्वारा जो कार्य हुए, बुद्धि के द्वारा जो कार्य हुए, अहम करके मैं करके जो कार्य हुए, कर्ता भोक्ता मानकर, वो सब इकट्ठा हुआ है, एक जन्म का नहीं। इसमें बहुत सारे इन समूह की जो चमक है, इस ये संस्कारों के अंतःकरण की वृत्तियों ने जो हमें बांध लिया, जिसकी रश्मियां बहुत लंबी लंबी है, अर्थात सूत का लंबा सा धागा, जितना लंबा धागा होगा उतना ज्यादा लपेटेगा, उसी तरह से हम इसके अंदर में लिपटते चले गए, बंधते चले गए, बंधते चले गए, और हमसे अब ये बंधन खुल नहीं रहा है। इसे हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते तो हैं, परंतु छूट नहीं रहा है। उसके लिए जब तक ये छूटेगा नहीं, तब तक हम उसके दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए मुमुक्ष परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे हिरण्यगर्भ, हे संपूर्ण प्रपंच को उत्पन्न करने वाले प्राणी मात्र के स्वामी, और जो आपसे पुरुषानकर्षणेन यमेन सूर्य, हे यम, हे एकांकी विचरण करने वाले, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और हे प्रजापति नंदन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हे सृष्टि के पालक, इन सब रश्मियों को, इन सब बंधनों को आप, हे सर्व पालक, हे सबके अंतःकरण में जो अस्तित्व मैं हूं, ऐसी जो अंतःकरण में बुद्धि है, जिस बुद्धि ने हमें बांधा हुआ है, यही रश्मि है। आप इन रश्मियों को, इन किरणों को हटा लीजिए। मैं हूं ऐसी जो रश्मि है, ऐसी जो किरण है, बुद्धि है, उसको आप हटा लीजिए। और ये हटेगी तभी मैं सोहस्मि, वह मैं हूं, उस परम सत्य का मैं दर्शन कर सकूंगा। इसलिए इस मंत्र के द्वारा हमें सर्वत्र परमात्मा, सर्वव्यापी सर्वत्र परमात्मा का हम दर्शन कर सकें, उसके लिए हम भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगले मंत्र में यही कहा गया है, वायु निलयामृतम तथेदम भस्मांत शरीरम, ओम क्रतोस्मर 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 क्रतोस्मर। अर्थात मेरा ये जो शरीर जिसमें प्राण वायु सूतात्मा हो, और यह शरीर भस्म हो जाए, भस्मांत शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाए। बोले शरीर भस्म हो जाए का अर्थ है, यह जो मेरा स्थूल शरीर है, जिस स्थूल शरीर में वायु वायु के साथ मिल गई, जल जल के साथ मिल गया, पंच तत्वों में विलय कर दिया, यही भस्मांत है। समझ लिया, जो पंच तत्वों के समूह से इकट्ठा होने पर मुझे प्रतीत होने वाला ये सुंदर शरीर, सजीव प्रतीत होने वाला, बड़ा ही आकर्षण प्रतीत होने वाला ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो मात्र पंच तत्वों का समूह है। इसकी प्रतीति ऐसे ही है जैसे समुद्र के अंदर वायु के संयोग से एक सुंदर तरंग उठती हुई लहर प्रतीत होती है, दिखती है। वह तरंग को यदि हम पकड़ने जाएं तो जल के अतिरिक्त, वो समुद्र के जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। उसी तरह से जो ये शरीर जिस पंच तत्वों से प्रतीत हो रहा है, इस पंच तत्वों के प्रतीत होने वाले शरीर को पंच तत्व में विलय कर दिया तो उसको कहा, इस प्रकार इसको विलय कर देना।